मेरे बहुत बहुत प्यारे साथियों, आप सभी को डॉक्टर विजय अग्रवाल का बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, आज 10 जुलाई 2017 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में मैं आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करने के लिए बहुत सारे विषय हैं, कुछ जरूरत से ज्यादा ही विषयों की भीड़ मेरे पास इकट्ठी हो गई है। मुख्य विषय मैं किसको इसमें से मानूं, मेरे लिए थोड़ा सा धर्म संकट हो रहा है, लेकिन मानना तो पड़ेगा ही। तो आज हम बात करेंगे तीन बहुत ही महत्वपूर्ण नई योजनाओं के बारे में, जिनकी शुरुआत कल हमारे राष्ट्रपति जी ने की है। उनकी मैं थोड़ी थोड़ी जानकारियां आपको दूंगा और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं इसकी भी मैं चर्चा करूंगा। तो आइए पहले थोड़ी सी न्यूज की बातें कर लेते हैं। मित्रों, न्यूज आप लोगों ने सुनी ही होगी, दो तीन चार छोटी छोटी खबरें हैं, मैं उनकी चर्चा पहले कर दूं। देख रहे हैं आप कि दार्जिलिंग के एरिया में लगातार वो समस्या चल रही है और जो आंदोलन, जो शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से हुई थी जिसकी कि वहां बांग्ला भाषा को अनिवार्य किया गया था, बढ़ते बढ़ते अब किस स्थिति पर वो आती चली जा रही है। आप फिलहाल इस पर केवल नजर रखें, लेकिन चूंकि हमारे देश की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना घटित हो रही है, दुर्भाग्यवश वह थोड़ी सी हिंसात्मक भी हो जाती है और उससे बहुत ज्यादा परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन आपकी नजर उन पर होनी चाहिए। देखते हैं कि वो क्या शेप लेता है, तब फिर उस पर हम लोग बातें करेंगे। मित्रों, जो दूसरी खबर थी वो नागालैंड में, इसको भी अब आप केवल सुनते रहिए, देखते रहिए। अगर इसमें कोई संवैधानिक मामला आएगा, संविधान का मामला आएगा, तब फिर हम लोग उस पर बात करेंगे। नागालैंड की घटना है, नो डाउट राष्ट्र की घटना है, एक महत्वपूर्ण घटना है, राष्ट्रीय घटना ये, भले वो राज्य से जुड़ी हुई है क्योंकि सरकार तो बहुत महत्वपूर्ण संस्थान होती है, लेकिन वो हमारे लिए सिविल सर्विस के लिए उपयोगी तब होगा जब इसमें कोई संवैधानिक मामला आएगा, है ना। अदरवाइज ठीक है, राज्यों की घटनाएं हैं, राज्यों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट घटना है, नो डाउट। इसके बाद मित्रों, एक न्यूज आपने सुनी होगी, एक स्टेटमेंट सुना होगा हमारे वित्त मंत्री जी का, और न्यूज में लाइन ये थी कि जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं वो प्रतिगामी कर होते हैं, ये वाक्य आपने सुना, और फिर वित्त मंत्री जी की वॉइस भी उसमें आगे टेलीकास्ट की गई थी, ब्रॉडकास्ट की गई थी। देखिए, जो अप्रत्यक्ष कर होते हैं, मैं थोड़ा सा इसको एनालाइज कर दूं, अप्रत्यक्ष कर का मतलब यह जो आपसे डायरेक्ट नहीं लिया जा रहा है, आपसे लिया जा रहा है लेकिन आपको पता नहीं चल रहा है। जैसे मान लीजिए कि पहले कस्टम एक्साइज टैक्स लगाया जाता था, वस्तुओं पर उत्पादन शुल्क लगाए जा रहे हैं, तो फैक्ट्री ने वो टैक्स दे दिया, सरकार को दे दिया, और फैक्ट्री ने जो टैक्स दिया सरकार को, तो उस जो वस्तु उसने तैयार की उसमें उस टैक्स को जोड़ दिया क्योंकि उसके प्रोडक्शन कॉस्ट में आ गई वो, तो और फिर वो ग्राहकों से वसूल कर रहा है, सभी ग्राहकों से वसूल कर रहा है और हमें पता नहीं चल रहा है कि हमसे लिया जा रहा है। हम तो केवल वस्तु की कीमत दे देते हैं कि अच्छा ये 15 रुपए की, हम 15 रुपए दे देते हैं, उसे थोड़ी पूछते हैं भैया कि इसमें कितना कितना कौन कौन सा कितने का टैक्स है। तो उन्होंने जो कहा कि प्रतिगामी है, इस मायने में ये बात कही कि इसमें हर व्यक्ति समान टैक्स देता है, गरीब भी वही दे रहा है, मिडिल क्लास का व्यक्ति भी वही दे रहा है, और करोड़पति खरबपति व्यक्ति है वो भी उस पर उतना ही टैक्स दे रहा है। जैसे मान लीजिए कि एक साबुन की टिकिया ले लीजिए, साबुन की टिकिया पर अगर टैक्स न लिया जाए तो वो 10 रुपए की हम सबको मिल सकती है, उस पर टैक्स लिया जाता है तो वही हमें 15 रुपए की मिलती है। तो अब साबुन ऐसा तो नहीं होगा कि गरीब आदमी को 12 रुपए में दिया जा रहा है, मिडिल क्लास को 14 रुपए में और धनी आदमी को 15 रुपए में, सबको 15 रुपए में मिल रहा है। यानी कि अब जो सरकार 5 रुपए टैक्स दे रही है वो सबसे वसूल किया जा रहा है समान रूप में, इसे ही कहा गया प्रतिगामी कर। ये प्रतिगामी कर है, जबकि एक डेवलपिंग कंट्री खासकर भारत जैसे देश में तो बहुत जरूरी है कि जो धनी व्यक्ति है वो अधिक टैक्स दें और जो गरीब व्यक्ति है वो कम से कम टैक्स दें, बल्कि दें ही ना। इसे प्रोग्रेसिव टैक्स कहा जाता है, प्रगतिशील टैक्स की प्रणाली कहा जाता है। तो यह आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उन्होंने जीएसटी के संदर्भ में यह बात कही थी, क्योंकि जीएसटी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें ये अप्रत्यक्ष कर एक तरीके से वो कर दिए गए हैं, काफी कुछ मर्ज करके उनका एक अलग सिस्टम बना दिया गया है। मित्रों, इसके बाद मैं थोड़े से अखबार की खबर पर आता हूं और फिर दो महत्वपूर्ण बातों पर मैं आऊंगा। एक अखबार दैनिक जागरण की खबर है कि अहमदाबाद को देश की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है। वर्ल्ड हेरिटेज सिटी, पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी भारत का। एशिया में इससे पहले दो और, मतलब एशिया मतलब इस कॉन्टिनेंट में, सब कॉन्टिनेंट में दो और वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किए जा चुके हैं, जिसमें एक नेपाल में है भक्तपुर और दूसरा श्रीलंका में है गाले, और ये तीसरा है भारत का अहमदाबाद, जो एक बहुत बड़ी बात है। तो मिस्टर थोड़ा सा आपको अहमदाबाद के बारे में मालूम होना चाहिए, जो स्टूडेंट गुजरात के हैं उन्हें तो स्पेशली ही मालूम होना चाहिए कि अहमदाबाद की स्थापना कब हुई थी। 15वीं सदी में सुल्तान अहमद शाह ने इसे साबरमती नदी के किनारे बनाया था। थोड़ा बहुत हमें भी जानकारी सबको होनी चाहिए। इन्होंने जो रीजन दिया कि ये क्यों इसे घोषित किया गया है, तो उसका कारण, उसके कारण कुछ दिए हुए हैं कि क्यों इसको वर्ल्ड हेरिटेज माना गया। तीन चार मेन कारण है। पहला तो ये है मित्रों कि यहां अहमदाबाद में हिंदू, मुस्लिम और जैन धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं, और वहां जो आर्किटेक्ट, जो स्थापत्य कला है, उनका जो विकास है उन सबके मिलने जुलने से हुआ है। दूसरा यह है कि अहमदाबाद में जो हमारा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा जो प्रोटेक्टेड स्थल है वो 26 हैं, यानी कि काफी प्रोटेक्टेड स्थल हैं, संरक्षित क्षेत्र जिसे हम कहते हैं, जो जिसकी देखरेख आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कर रही है। एक पॉइंट यह भी है कि गांधी जी 1915 से लेकर के 1930 के दौरान साबरमती आश्रम में ही रहे थे, आज भी वो स्थल मौजूद है, और मुझे तो तीन चार बार वहां जाने का मौका भी मिला है। तो ये कुछ रीजन है जिसकी वजह से अहमदाबाद को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी घोषित किया गया है, आपकी जानकारी में होना चाहिए। बट नेचुरली कि जब किसी भी स्थान को इस तरह से घोषित किया जाता है तो वहां जो टूरिज्म है वो काफी बढ़ जाता है। और आपको ये भी बता दूं कि ये जो घोषित करने का जो काम है मित्रों, यह यूनेस्को करती है, है ना, यूनेस्को ने ये किया है। तो थोड़ी सी मुझे इसकी जानकारी आपको देनी थी। एक खबर है मित्रों G20 की, और G20 के खबर के तहत आपको देखना यह है कि जो सम्मेलन हुआ है, उस सम्मेलन की एक अद्भुत बात यह रही है कि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश एक तरीके से अलग थलग सा पड़ता हुआ दिखाई दिया। ये मैं केवल एक फैक्ट बता रहा हूं, बाकी सब घोषणा पत्र आ गए हैं, क्या निर्णय लिए गए वो सब आ गए हैं, अखबारों में अवेलेबल हैं। उसका कारण यह है कि आपको मालूम है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने पेरिस जलवायु सम्मेलन से अपने को विड्रॉ कर लिया था, मतलब हम इसमें शामिल नहीं होंगे। और जो G20 की बैठक हुई, जो बाकी 19 देश हैं, वो उस सम्मेलन में लिए गए निर्णयों के पक्ष में थे, क्योंकि दुनिया को अगर बचाना है तो आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में सोचना पड़ेगा। ट्रंप अपने टस से मस नहीं हुए, तो बिल्कुल अलग थलग पड़ गए। देखिए सीधी सी बात है कि अगर अमेरिका को मतलब विश्व का नेतृत्व करना है सो कॉल्ड, और मानकर अगर वो अगर ये मानता है कि उसे सम्मान मिले और दुनिया स्वीकार करे, तो उसे दुनिया की चिंता करनी पड़ेगी। अगर अमेरिका सिर्फ अमेरिका की ही चिंता करेगा तो दुनिया फिर उसकी चिंता क्यों करेगी? तो ये एक बड़ी विचित्र सी स्थिति है, मतलब एक नई विश्व व्यवस्था की तरफ संकेत दे रहा है कि क्या फिर एक ऐसी विश्व व्यवस्था बनेगी जिसमें अमेरिका का नेतृत्व नहीं होगा, या अमेरिका बिल्कुल बैक बेंच पर होगा, कोई और दूसरा देश सामने आएगा। ये एक ऐसा फैक्ट है जो आपके दिमाग में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि अब जो इंटरनेशनल रिलेशन जो आपको तैयारी करनी है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्न ये है। जैसे रशिया का बिखर जाना एक बहुत बड़ा टर्न है, लिबरलाइजेशन की शुरुआत होनी एक बहुत बड़ा टर्न है, सेकेंड वर्ल्ड वार का खत्म हो जाना, होने के बाद यूएनओ की स्थापना होना, ये बहुत बड़ा टर्न है। ये कुछ ऐसे मोड़ हैं विश्व संबंधों के जो हमें अच्छे तरीके से मालूम होने ही चाहिए। तो मित्रों इस पर आप थोड़ा सा ध्यान रखें। दोस्तों अब मेरे पास दो महत्वपूर्ण विषय बचे हुए हैं, और एक तो है असम की खबर। आपने सुनी कि वहां बाढ़ से काफी दिनों से असम त्रस्त है, तो मुझे ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बातें करनी थी, लेकिन मैं इसके बारे में बाद में बात करूंगा यदि मेरे पास समय बच गया तो। अदरवाइज मैं फिलहाल इतना ही आप सबसे कहना चाहूंगा कि ब्रह्मपुत्र नदी की तैयारी आपको अच्छे तरीके से कर लेनी चाहिए। ब्रह्मपुत्र के बारे में हाँ, वो अच्छे से कर लेनी चाहिए, मैं अच्छे से का क्या मतलब है इसकी जरूर मैं चर्चा करता आज। अब देखता हूं कि क्या होता है। आइए फ्रेंड्स, अब मैं तीन बहुत ही जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो भारत सरकार ने लॉन्च की हैं, कल हमारे राष्ट्रपति जी ने उसका शुभारंभ किया है, उसकी मैं चर्चा करता हूं। देखिए तीन इंपॉर्टेंट क्यों है, शायद आप समझ गए होंगे कि आप 2017 का प्री का जनरल स्टडीज का पेपर उठा करके देखिए, फर्स्ट पेपर, तो प्लानिंग पर, सिर्फ योजनाओं पर, जो नवीन योजनाएं, पुरानी योजनाएं नहीं, नवीन योजनाओं पर 8 प्रश्न पूछे गए हैं, 8। इससे पहले भी पूछे जाते रहे हैं लेकिन इस साल उनकी संख्या ज्यादा रही, यानी कि अब हमें अपने प्रिपरेशन में सरकार की जो योजनाएं आती हैं उन पर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा। कई योजनाएं ऐसी होती हैं फ्रेंड्स की जो आती हैं अखबार में, कहीं कोने पर थोड़ी सी छप गई, फिर चूंकि उनकी बाद में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती है, उन योजनाओं के बारे में जो योजना पत्रिका है या कुरुक्षेत्र है उनमें भी ज्यादा लिखा नहीं जाता है, क्योंकि दूसरी बड़ी योजनाएं हैं तो ज्यादा ध्यान लोगों का उस पर होता है, तो ये हमारे पकड़ से बाहर हो जाती है। तो आपको ध्यान रखना है, अब जो साल भर की आप तैयारी कर रहे हैं, कि जो योजनाएं हैं उन पर आपकी निगाहें हो। मित्रों, कल 3 योजनाएं लॉन्च की हैं हमारे राष्ट्रपति जी ने, उसमें एक है स्वयं। याद रखिए कि ये तीनों योजनाएं जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के द्वारा शुरू की गई है, क्योंकि तीनों का संबंध शिक्षा से है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। और ये जो 3 योजनाएं हैं, एक है स्वयं, दूसरी है स्वयं प्रभा और तीसरी है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी। देखिए शायद आप लोग के अखबारों में ये इन योजनाओं के बारे में हो, लेकिन वहां छोटी सी खबर होगी, इन तीनों के बारे में आपको जानना चाहिए। तो दोस्तों, पहली है स्वयं, देखिए स्वयं है और दूसरी है स्वयं प्रभा। स्वयं का मतलब है खुद, दूसरा नहीं, खुद, मतलब हमें किसी दूसरे की मदद नहीं चाहिए, हम खुद करें। तो ये बेसिकली ये जो दोनों हैं ये एजुकेशनल एक्टिविटीज है। स्वयं जो एक योजना है, इसे कहते हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, इससे पूरा का पूरा करेक्टर क्लियर हो जाएगा। मैसिव मतलब बहुत बड़े विस्तार में, ओपन बिल्कुल खुला ऑनलाइन कोर्स, जैसे ओपन यूनिवर्सिटीज हैं उसी का एक मॉडर्न वर्जन आप इसे कह सकते हैं कि ऑनलाइन कोर्स है। आप ऑनलाइन ये कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स के जरिए 2000 से अधिक कोर्सेज होंगे, सोचिए आप, इस योजना में 2000 कोर्सेज, और गवर्नमेंट ये मानकर चल रही है कि लगभग 3 करोड़ जो स्टूडेंट हैं इसका फायदा उठाएंगे। और इसमें जो कोर्स होंगे दोस्तों, जो पाठ्यक्रम उपलब्ध कराए जाएंगे आपको, जो मटेरियल उपलब्ध कराया जाएगा, वो स्कूल के लिए भी होगा, ग्रेजुएशन के लेवल का भी होगा और पोस्ट ग्रेजुएशन के लेवल का भी होगा। यह है स्वयं। दूसरा है स्वयं प्रभा। स्वयं प्रभा और स्वयं में फर्क यह है कि स्वयं तो आपके डिजिटल पर, उस पर है, आप ऑनलाइन उसको करेंगे, लेकिन जो स्वयं प्रभा है ये बेसिकली एक टेलीविजन चैनल के माध्यम से होगा, DTH, जो डायरेक्ट टू होम जो टेलीविजन है, इसके 32 चैनल्स होंगे, क्योंकि लैंग्वेजेस डिफरेंट होंगी, तो 32 चैनल्स होंगे, आप टीवी पर ये प्रोग्राम देख सकेंगे। और इसका जो मूल उद्देश्य है दोस्तों, वो है कि जो एजुकेशन की जो हाई क्वालिटी है, जो अच्छी क्वालिटी है, वो टीचर्स को भी प्रोवाइड किया जाए, स्टूडेंट को भी प्रोवाइड किया जाए और हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो नागरिक हैं, उनको भी प्रोवाइड किया जाए। और यह इसमें जो प्रोग्राम टेलीकास्ट होंगे वो क्लास का लाइव टेलीकास्ट, जैसे कि आप इसके क्रिकेट का लाइव प्रोग्राम देखते हैं, एक तरफ क्रिकेट खेला जा रहा है और आप प्रोग्राम देख रहे हैं, तो क्लासेज चलेंगी, वहां प्रोफेसर्स टीचर्स पढ़ाएंगे और आप सीधे उसका लाइव टेलीकास्ट अपने टीवी चैनल्स के स्क्रीन पर देखेंगे। और ये डेली 4 घंटे का प्रोग्राम होगा। और सोच कर देखिए कि इसमें कौन कौन लोग भाग ले रहे हैं, आईआईटी मुंबई, आईआईटी मथुरा, आपके मद्रास, आपके आईआईटी गुवाहाटी, आईआईटी कानपुर, ऐसी संस्थाएं, आईआईएम भी हैं, बेंगलुरु आईआईएम है, कलकत्ता आईएम है, बीएचयू यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, जेएनयू यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जो हमारे देश के बहुत ही प्रोमिनेंट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ये इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो कल्पना करके देखिए कि कितना अच्छा जो रीडिंग मटेरियल है वो आप लोगों को घर बैठे मिल सकेगा। आप लोगों को मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपके लिए भी ये उतना ही उपयोगी हो सकता है। मित्रों, इसके बाद जो तीसरा प्रोग्राम जो लॉन्च हुआ, शुरुआत हुई है, वो है नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, NAD, नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, यह भी एचआरडी मिनिस्ट्री का ही इनिशिएटिव है। और इसमें कुछ नहीं, मतलब हमारे जो एकेडमिक जो सर्टिफिकेट्स होते हैं उनको डिजिटलाइज कर दिया जाएगा, उनका डिजिटलीकरण कर दिया जाएगा और हमको जो सर्टिफिकेट भी मिलेगा वो डिजिटल फॉर्म में दिया जाएगा। तो उससे होगा ये कि जैसे हम लोग है ना, मान लीजिए कि मैं कहीं अप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं उनकी मैं फोटोकॉपी लगाऊंगा और उसको सेल्फ अटेस्टेड करके जमा करूं, उसमें कुछ नहीं, मेरा एक नंबर है डिजिटलाइजेशन किया हुआ है वो मैं केवल दे दूं तो पता लगेगा कि उसमें सारा मेरा रिकॉर्ड है और वो देखना चाहेंगे तो उसमें उनको सारा रिकॉर्ड मिल जाएगा। मतलब सर्टिफिकेट में लेकर के जाऊं, ढो करके लेके जाऊं, उन्हें संभाल करके रखूं, ये सारे के सारे संकट इससे खत्म हो जाएंगे। तो जो अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के जरिए जो अप्रूव्ड सर्टिफिकेट प्रोवाइड किए जाएंगे उन सारे सर्टिफिकेट्स को डिजिटलाइज कर दिया जाएगा। ये तीन योजनाएं हैं मित्रों, मैंने कुछ सामान्य सी जानकारियां आपको इन तीनों योजनाओं की दे दी है। अब देखते हैं आगे इन पर अगर कुछ और पढ़ने को मिला तो डेफिनेटली वो आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि किस तरह से इनका मॉडर्नाइजेशन करने की कोशिश की जा रही है। मित्रों, अब थोड़ी सी जानकारी मैं आपको ब्रह्मपुत्र के बारे में दे दूं। आप सिविल सर्विस के क्वेश्चन पेपर उठा करके देखिए प्री के, तो नदियों के बारे में मैंने देखा कि दो क्वेश्चन तो होते ही हैं, दो क्वेश्चन नदियों के बारे में हो जाते हैं और बट नेचुरल है कि वो नदी भारत से संबंधित होती हैं। आप किताब में उठा करके देखेंगे तो बहुत से नदियां हैं, उनके अपने उद्गम स्थल हैं, वो कहां कहां घूम करके कहां पहुंचती हैं इसके बारे में जानकारी है, उनकी बहुत सी सहायक नदियां होती हैं उनके बारे में जानकारी है, तो सहायक नदियों पर पूछ लिया जाता है। तो अब आप कितनी सहायक नदियां याद करेंगे, व्यावहारिक रूप में तो देखिए संभव नहीं है। मैं कह सकता हूं आपको कि हाँ आप याद कर लीजिए रटिए, लेकिन थोड़ा सा मुश्किल काम तो है। तो मैं आप लोगों को एक ही तरीका बताना चाहूंगा कि देखिए जब कोई भी नदी किसी भी वजह से चर्चित हो तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप उसके उसके बारे में पढ़ लीजिए, फिर अखबारों में चीजें आती रहेंगी आप उनमें पढ़ेंगे, न्यूज में सुनते रहेंगे, तो वो तथ्य आपके दिमाग में धीरे धीरे बैठ जाएंगे और फिर आपको इन्हें दोहराने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बड़े आराम से उसका आप तुरंत उत्तर दे देंगे, ये हमारे दिमाग की एक अद्भुत क्षमता होती है। बस उसी संदर्भ में मैंने ब्रह्मपुत्र की बात कही है। ब्रह्मपुत्र आप देख रहे हैं कि उसमें बाढ़ आई हुई है, असम वाला जो एरिया है वो लगातार इससे काफी त्रस्त है, तो आप ब्रह्मपुत्र कहां से पैदा होती है, फिर भारत में कहां से वो एंटर करती है, एंटर करने के बाद कहां से होती होती कहां वो जाकर के गिरती है, भारत में कौन कौन सी सहायक नदियां मिलती हैं, इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए। तो यही बातें फिर आपको जब अखबारों में पढ़ने को मिलेंगी तो वो एक ऑटोमेटिक रिवीजन होता जाएगा और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन का जो मुझे एक आदर्शतम तरीका लगता है स्पेशली प्री का वो यह लगता है। तो मित्रों, अब मैं जहां तक न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग का सवाल है, कुछ न्यूज़पेपर्स की बहुत अच्छी क्लिपिंग्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूं, वो आप लोग देख लेंगे। और अब मैं आता हूं अंतिम चरण पर और इस अंतिम चरण में मैं स्वागत करना चाहूंगा अपने उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की अक्टूबर नवम्बर में होने वाले क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन चार साथियों के नाम हैं राजेंद्र रजक, आप झांसी उत्तर प्रदेश से हैं, निर्मल कुमार रवि, आप चात्रा झारखंड से हैं, विपुल कुमार, आप पूर्णिया बिहार से हैं, और मनीष कुमार पनसेरिया, आप कटनी मध्य प्रदेश से हैं। तो आप चारों साथियों का दोस्तों मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से बहुत बहुत हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। और इसी के साथ ही मित्रों अब मैं इजाजत चाहूंगा, नमस्कार।